ਮਿਲਟਨ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਮਿਲਟਨ ਫਿਊਚਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੱਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। GTA ਦੇ ਉਜਵਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ .ca ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।
ਚੌਖੀ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਬ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸੌਖੀ ਵੱਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਚੌਖੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/prepared।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
Ta-da!
The Singhs are back.
ਸਫ਼ਰ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
With more fashion.
ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲਾਂ।
More alterations.
ਮੈਂ ਬਦਲਾਵਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲਾਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਸਭ ਕੁਝ।
And more drama that will have you in stitches.
ਘਾਟਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Bollywood, new season Sunday, watch free on CBC Jam.
ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਬਰਫਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨੋ ਪਲੋਰ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ 311 ਐਪ ਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ brampton.ca/snow ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ।
जी साहब, वेलकम बैक अगेन। एंड 4:56 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और एक नई रिपोर्ट आई है अभी थोड़ी देर पहले, नेविगेशन पब्लिश बाय नेविगेशन एंड लोकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी टॉम टॉम वाली क्या कह रहे हैं साहब। टोरंटो टॉप्स द नंबर वन, टोरंटो टॉप्स द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन नॉर्थ अमेरिका, बीटिंग न्यूयॉर्क and Mexico City. So number one hogi North America mein the most congested, most slowest traffic in North America. Or when it comes to most congested in the world, in the on the planet, unhone kaha hai, on the planet, sab Toronto number 3 pe aa gaya. Humne bronze liya, not to worry about it. Number one is London, England. Number two is Dublin. And number 3 is Hamara Toronto. Puri duniya, pure planet mein. Aur yahan par unhone kaha hai ki sab badi bahut sari list di hai unhone ki kitna time lagta hai, kidhar se kahan jaane ke liye kya hai. Just to summarize this, commuters spend 29 minutes to complete 10 kilometers. Toronto mein 10 kilometers jaane ke liye aapko 29, I live in Markham now, which is about 48 kilometers from here. So 48 kilometers pe aap andaza laga le mujhe kitne 2 ghante lagenge. London England mein wahi jo hai 37 minutes and 20 seconds lagte hain 10 kilometer ke liye. And on the other hand, agar aap Dublin ko dekhe to 29 minutes and 50 seconds, humne 50 seconds se usko beat kiya hai. साहब, मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड।
कोई बात नहीं, वो अभी तो कहते हैं यहाँ पे आबादी, मैं तो कहती हूँ जिसने इसकी आबादी इंडिया और पाकिस्तान जितनी हुई फिर क्या होगा।
ठीक हो गया। सम सर्विस ऑन्टेरियो सेंटर्स जो हैं वो क्लोज हो रहे हैं जी।
लो, आ गई लाइन, आप इतना लंबा है।
मगर आप घबरा क्यों रही है? वो उसको उन्होंने कहा है कि हम इसको क्लोज करके इसको जो है स्टेपल्स में लेके आ रहे हैं, जो वहां से हटाएंगे। अब एक जैसे इलाके में बंद किया आपका, तो स्टेपल्स आपके ब्रैम्पटन में है, उसमें लेके आ रहे हैं. तो ज्यादातर स्लोली स्लोली बट स्लोली दे आर कटिंग द कॉस्ट, क्योंकि वहां के किराए वगैरह होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो वो जो है वहां से वो स्टेपल्स में, स्टेपल्स बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वहां पार्किंग आसानी से.
कल मैं सुबह ना 9 से 7 से 9 रमनजीत का आज का प्रोग्राम सुन रही थी. उन्होंने बड़ी कमाल की बात की. उसने कहा कैनेडा की हुकूमतों ने ना आपस में फेरी लगाई हुई है एंड पॉलिटिशियन सारे इकट्ठे हैं. 10 साल रहती है कॉन्जर्वेटिव, वो क्या कहती है, वो आके सख्तियां करती है, इधरों पैसा बचा इधरों पैसा बचा, हाँ. फंड भर लेते हैं,
हाँ.
फिर अगले 10 साल आ जाती है लिबरल,
हाँ.
वो एकदम से पठा गोल करके सारा पैसा खर्च करके रज के कर्जे थले ला जाते हैं.
फर्क क्या है, अगेन लिबरल्स वालों को गुस्सा नहीं आना चाहिए इस बात पे, लिबरल्स पे को गुस्सा नहीं आना चाहिए इस बात पे. मैं आपको एक बात बताऊं, होता ये है कि लिबरल्स लिव फॉर टुडे, कंजर्वेटिव्स लिव फॉर टुमारो.
अच्छा, फिर अगर अगर इसका मतलब है 15 साल अगर अब लिबरल्स को दे दिए तो लिबरल्स तो मुल्क का कड़का कट के चले जाएंगे.
आप तो खुश रहेंगी ना, आपके बच्चों और बच्चों
को क्या होगा? कुछ नहीं. मैं आपको बताती हूँ, जब फिर वही बात है, मुल्क का सिस्टम अपने घर के सिस्टम के बराबर है. आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन मगर यस, मैं इतना जरूर कहती हूँ, आप अपना घर चलाते हैं और अगर आप अपनी आमदन से ज्यादा खर्च करके आप डेट पे चले जाएंगे तो आप डेट ही पे करते रहेंगे ना, तो आप अपनी खानदानों को आने वाली नस्लों को मरवा के जाएंगे.
डिफरेंस इज, जो आपने मिसाल दी है, द डिफरेंस इज कि मेरे पास कोई मशीन नहीं है डॉलर छापने की, गवर्नमेंट्स के पास मशीन होती है डॉलर छापने की, एंड दे डू इट, दे टेक एडवांटेज ऑफ दैट.
तो इन्फ्लेशन का बायस बनते हैं ना, दे देमसेल्फ आर रीजन फॉर.
अभी जो भी हुआ हुआ है, सिर्फ नॉट ओनली इन कनाडा, पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं उसको इन्फ्लेशन तो दे कैन नॉट कंट्रोल इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता.
अच्छा भाजी भाई, मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ. आपको पता है अमेरिका में जीओपी की जो इलेक्शंस हैं रिपब्लिकन्स के, आई वाज सरप्राइज कल मैं, बल्कि आपको पता है ये एक डिबेट हुई थी, जितनी डिबेट्स अब तक हुई हैं उन डिबेट्स में डोनाल्ड ट्रंप तो किसी एक डिबेट में नहीं गए. और इट स्टार्टेड विद 13 पीपल, 13 लोगों से ये स्टार्ट हुई थी, मगर अब 2 कैंडिडेट रह गए. कल एक और गवर्नर थे, उन्होंने भी क्रिस्टी जो है न्यूजर्सी के, उन्होंने भी रेस से बाहर निकलने का कह दिया. और निकी हेली और वो फ्लोरिडा के जो गवर्नर हैं, वो एक दूसरे को जूतियों के हार पहनाते रह गए. और 13 से ये मामला शुरू हुआ था. अब डोनाल्ड ट्रंप तो किसी भी डिबेट में अभी तक नहीं गए. सिर्फ
डोनाल्ड ट्रंप डजंट नीड टू बी इन द डिबेट.
Yeah.
He doesn't need to be in the debate.
Yeah.
According to Environment Canada, get ready, bhai. Get a fist, tayar ho jaiye aap. Saturday tak 10 to 20 centimeters of snow. Gusty wind up to 70 kilometers per hour. Slushy, snowy, slushy. Aisa mausam rahega up Saturday tak. Aur ye afsos ki baat hai. I knew him personally. एड ब्रॉडबैंड जो थे, ये एनडीपी के लीडर थे. जो एनडीपी आज आपको नजर आती है ना, अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू एड ब्रॉडबैंड जो थे, ये 1975 से 1989 तक ये पार्टी के लीडर रहे, एंड एनडीपी पार्टी के लीडर रहे फेडरल की. और 87 ईयर्स ओल्ड ही पास्ड अवे जस्ट फ्यू आवर्स अगो. Is a breaking news. So
in 11
at broadband. Or ER jo hai, that is bad. That is simply bad. They got to do something about it. I think they gave up on it. ER jo hai, hospitals mein, all across Canada. Could you imagine you go to the hospital and you are sitting in ER and your turn comes after 20 hours.
Bahut shukriya. 4155, man, I just saw your message. Aapne likha hai. Okay, let's go 3 baje. Okay, we are going very fine up to now. Is that right? Yeah, we are going fine. Thank you very much for being with us. Studio ka number 416-620-1778. I'll take you to Janab Fayaz Birana sahab. Aaj ki khabron ke lihaz se 3 resignations mere aapke samne aa gaye. Election commission se ek resignation aaya which has not been accepted yet. एंड दो हमारे जो जजेस हैं और 1 जस्टिस जो इजाजुल हसन है, ये तो मतलब सेकेंड इन कमांड एट द मोमेंट, बट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर ही वॉज गोइंग. मगर अब आप देखिएगा कि जिस चीज को माइनस करना है आप, पाकिस्तान में इलेक्शन क्या खाक होंगे 8 फरवरी को? अभी तक तो वो एक पार्टी बल्ले को लेके बाहर निकलती है, दूसरी उसको बल्ले को फिर कोर्ट में लेके चली जाती है. यानी दिस इज हमारी कौम जो है वो तोहफा. मेरा दिल चाहता है एक बड़ा खूबसूरत इंसान है, हालांकि उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, कामरान यहाँ पे होते हैं, टोरंटो में होते हैं. मेरी कोशिश है कि मैं कामरान को अपने साथ एयर पे लेके आऊँ. ऑफ कोर्स अपनी पार्टी के हर चीज़ अपनी पार्टी की अच्छी लगती है, बट इज अ वेरी जेन्युइन थॉरो जेंटलमैन. आई विल ट्राई टू ब्रिंग कामरान अपने साथ लेके आऊँगी और फिर हम देखते हैं कि कामरान हमें क्या बताते हैं, कि वो क्या महसूस करते हैं. मगर आज जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान की जितनी लोग हैं सामने आके, कोई माने ना माने, मगर जाहिर है जितने भी ओप्रेस्ड होते हैं उनके साथ हर एक की फेवर्स होती हैं. और पाकिस्तान में तो लोग यही महसूस करते हैं कि एक शख्स जिसने पाकिस्तान को हॉस्पिटल्स भी दिए. आप इमेजिन कीजिएगा इस मुल्क में, अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. मेरा एक बहुत प्यारा भाई है, आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर दिस ब्रदर. तो मुझे याद है मैंने, ये पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए कितना जुल्म है कि डॉक्टर कदीर खान आए. तो कहते लो उसको क्या जरूरत थी कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेता, वो पढ़ने लिखने वाला आदमी है, इलेक्शन पॉलिटिशियंस के लिए होता है. अच्छा मैं चुप करके ही पड़े थे, इज्जत करती हूँ उनकी, आई वॉज क्वाइट. फिर मैंने एक दफा उनसे कहा, मैंने कहा अब तो सत्तारीदी को भी ना कौम ने बनने दिया, यानी उसे आपके जनाजे उठा उठा के मर गया. वो जो काम कर रहा है वो उसका काम है, पॉलिटिक्स उसका काम नहीं है. That's it. हमें मतलब अपनी तर्ज के लोग चाहिए, तो that's all what it is. बहरहाल ये जस्टिस फायज ईसा जो आपको बताइए, जस्टिस फायज ईसा ने जो जुबान इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने जस्टिस मुजाहिर नकवी के बारे में बड़े अजीबोगरीब बयान दिया. मैं वो आपके साथ शेयर करती चलूं. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये नहीं हो सकता कि कोई जज पूरे इदारे की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए और हम उस कोई कार्रवाई ना करें. ये जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरप्राइज में साबिक जज मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काउंसिल का इजलास हुआ. इजलास के आगाज पर अटॉर्नी जनरल उन्होंने इस्तीफा देने वाले जज मुजाहिर सैयद का इस्तीफा पढ़कर सुनाया. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर कोई जज इस्तीफा दे जाए तो काउंसिल के रूल्स के मुताबिक इसके खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती. मगर हमारे जो फायज ईसा साहब हैं उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है, वो हमारी रेपुटेशन तबाह करके चला गया और हम उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें. काउंसिल के रुकन जस्टिस अमीर भट्टी की जानब से आर्टिकल 209 की निशानदेही की गई. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आईन के मुताबिक कोई रुकन दस्तियाब ना हो तो उसके बाद सीनियर तरीन जज काउंसिल का रुकन होगा. चीफ जस्टिस ने कहा कि इजाजुल हसन कार्रवाई में बैठना नहीं चाहते, हमने देखना है कि क्या हम 4 अरकान कार्रवाई को बढ़ा सकते हैं. आप इन्होंने कहा है कि जस्टिस इजाजुल हसन कार्रवाई में बैठना नहीं चाहते, बहरहाल आज उनका रेजिग्नेशन आपने सुनी लिया है. चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आर्टिकल 209 के तहत एक मेंबर की अदम मौजूदगी में सीनियर तरीन जज मौजूद होता है और मंजूर अली शाह दस्तियाब हुए तो कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे. और आज जस्टिस मंजूर अली शाह ने यकीनन कार्रवाई को आगे बढ़ाया भी है. थोड़ा वक्फा भी दिया गया और फिर उसके बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ. जनाब काजी फायज ईसा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब मुआवनत करें कि क्या मामला खत्म हो गया है. और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है दरख्वास्तें गलत हों, जज ने दबाव पर इस्तीफा दिया हो, जज के दबाव में आकर इस्तीफा देने से इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा. यकीनी तौर पर जज को ओहदे से हटाने की कार्रवाई तो खत्म हो गई, इस्तीफा देने किसी जज का ज़ाती फैसला है, हमारे सामने गैर मामूली सूरत हाल है. और ये एक मामला, यानी पाकिस्तान की अदलिया तो आपको बताइए वैसे ही 139th नंबर के ऊपर आ रही है. सैड मैन, इट्स सैड. आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे की समाअत का भी आगाज हो गया है. आपको पता होगा मगर ये अफ्रीका जैसा एक मुल्क है जिस मुकदमे को लेके गया है. मगर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इवन नॉर्थ अमेरिका में भी जो बहुत से लोग हैं वो अब महसूस कर रहे हैं कि इसराइल ज्यादती कर रहा है. जैसे कल की खबरों में भी आपने सुना था कि इंग्लैंड में भी, चलिए उन्होंने कहा है कि हाँ बाज़ जगहों पे जो इसराइल है वो हदूद को क्रॉस कर रहा है, तो एटलीस्ट वो लोग जो एस्टेब्लिश करने वाले हैं, वो लोग जो सपोर्ट करने वाले हैं, वो अल्टीमेटली इस बात पे को मानने पे तैयार तो हुए. मगर इसराइल इज़ नॉट रेडी. यस, قطر نے ایک پیشکش کی ہے اور قطر نے یہ پیشکش کی ہے کہ ہم تمہارے تمام کے تمام قیدیوں کو واپس لے آتے ہیں اور ہم حماس کو مکمل طور پہ وہاں پہ خاتمہ کر دیتے ہیں مگر اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ بندی کو کر لے. مگر اسرائیل نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے سارے قیدی رہال, تھوڑا سا انہوں نے اپنا دکھایا ہے رجحان اس کی طرف دکھایا ہے کہ مائل نظر آتے ہیں کہ جنگ بدی, مگر دے آر ویری اسٹرکٹ آن اے وے کہ پہلے ہمارے جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. ایک اور نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ویری امپورٹنٹ. ہاں بائی دا وے آپ بتائیں کہ امریکہ نے تقریباً 40,000 کے قریب انتہائی سینسٹیو جو ہتھیار تھے وہ یوکرین کو دیے تھے. اور کہا جاتا ہے آج پینٹاگون نے یہ کہا ہے کہ وہ ٹریک نہیں ہو پائے. مجھے آپ نے یہ خبر سنی ہے؟ اور بلکہ یوکرین کے ایک سابق ممبر پارلیمنٹ ہیں, ان کا بھی ایک ہے, وہ بھی آئی تھنک سو کورٹ میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہیں ان کی امپیچمنٹ ہونی چاہیے اور وہ اپنا ٹیسٹیمونیل اس میں دینا چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے ہنٹر بائیڈن جو ہیں وہ کن کن کرپشنز میں ملوث رہے ہیں. یہ تو بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے, ہم نے کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. دنیا کے تقریباً 64 کنٹریز میں ایک دم سے الیکشن آ رہے ہیں. منڈے از ویری امپورٹنٹ, تائیوان کا الیکشن. اور جب میں تائیوان کے لوگوں کی کنسرنس سن رہی تھی تو موسٹ آف دا تائیوانینز دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو ود نارتھ امریکا, موسٹ آف دا تائیوانینز دے وانٹ ٹو گو ود چائنا. دے سے وی ہیو سیم ہیریٹیج, سیم کلچر, اینڈ وی وانٹ ٹو گو with China. Whereas اس وقت جو لیڈنگ پارٹی ہے وہ کا رجحان جو ہے دیٹ از ٹوورڈز امیرکا. اسی لیے امیرکا کے پریزیڈنٹس بھی وہاں پہ گئے. امیرکا کی وہ کون تھی باجی, میرے جیسی جو بوڑھی عورت ہے, وہ بھی گئی ہوئی تھی. تو چائنا بھی اپنی اشولیاں پٹاخے اس جگہ پہ چلا ہی دیا کرتا ہوتا ہے. یہ بھی جنگ, ڈائریکٹ جنگ تو نہیں ہوگی, یہ بھی پراکسی وار ہی ہوگی. لیٹس سی ہاؤ اٹ کمز ٹرو. لیٹ می ٹیک یو ٹو جناب فیاض ویلانا صاحب. اور فیاض ویلانا صاحب سے میری درخواست ہوگی آج کی صورتحال, اور یہ بڑی اسٹرینج صورتحال ہے کہ تین دن میں تین استعفے. الیکشن کمیشن سے ایک استعفیٰ آ جاتا ہے جس کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. جسٹس مظاہر نقوی کا استعفیٰ آ جاتا ہے جس پہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے تھوڑے سے لوز ریمارکس بھی دیے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ کسی جگہ پہ انہوں نے یہ بھی جا کے کہہ دیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جج نے زبردستی کسی دباؤ کے تحت میں آ کے کیا ہو. انہوں نے یہ بڑا غلط بیان بھی دیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جج جو ہے وہ ہماری ریپوٹیشن خراب کر دے اور ہم اس کے خلاف کیس نہ کر سکیں. مگر جسٹس اعجاز الحسن کے اوپر مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن وہ شخص ہو از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان بائی اکتوبر اینڈ ہی ریزائن. آج کی جو کاروائی تھی اس پہ وہ نہیں بیٹھے جن کو ریپلیس کیا جسٹس منصور نے. میرے ساتھ ہیں جناب فیاض ویلانا صاحب. آئی بلیو ہم درخواست کرتے ہیں جناب فیاض ویلانا سے. فیاض ویلانا صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم. اور پہلے تو یہ جسٹس اعجاز الحسن, اینڈ آئی واز تھنکنگ ہی کوڈ سی ہم سیلف ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان, مگر ان کو اس پوزیشن پہ لانے کے لیے عطا عمر بندیال سے ان کے رابطے اور عطا عمر بندیال کا پی ٹی آئی سے رابطہ, مطلب کوئی بھی بندہ درست نہیں ہے. کیا ہو گیا؟
وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. بات وہی ہے, وہ جو شعر تو اردو میں بنا ہوا ہے نا کہ اردو کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے. میرے خیال میں اردو کی جگہ اب ہم اپنی ہماری عدالت کا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے. عدلیہ کا جنازہ نکل تو اس وقت سے رہا تھا جب ہمارے موجودہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ایک کیس لگا تھا اور ان کی کرپشن کا کیس تھا. اس وقت سے جنازہ تو ان کا شروع ہو گیا تھا, لیکن لگتا ہے اس جنازے کو یہ بہت آگے لے کے جا رہے ہیں. اور وہ جنازہ پھر آپ نے دیکھا کہ بندیال صاحب نے کس طرح خاموشی سادھی, حالانکہ اس وقت اگر وہ تھوڑے سے جرت کا مظاہرہ کرتے, لیکن کیونکہ انہیں ہمارے پنڈی والوں کی طرف سے پریشر تھا اور اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو کیس بنا تھا آپ کو یاد ہوگا, اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ میں قاضی اپنا فروغ نسیم صاحب منسٹر تھے قانون کے, اور انہوں نے اس وقت کی باتیں اور بعض جہاں ابھی اب تک کی باتیں عمران خان کی اور عارف علوی کے بیانات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ فروغ نسیم صاحب پنڈی والوں کے بندے تھے جو وزیر قانون تھے ایم کیو ایم کی طرف سے عمران خان کی گورنمنٹ میں, اور انہیں پنڈی والوں نے ہی کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو سکیور کرنا ہے, کیس بنوایا گیا تھا, اس کیس کو کسی منطقی انجام تک پہنچائے بغیر ہی پہلے ہی جب قاضی صاحب انہوں نے سمجھا کہ ابراہم ہو چکے ہیں تو قاضی صاحب کا کیس ختم کر دیا گیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سرینا فائز عیسیٰ جو ان کی مسز ہیں انہوں نے کورٹ میں تینوں ججز جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ایک عطا بندیال صاحب تھے, ایک اعجاز الحسن تھے اور ایک اور تیسرے تھے, انہوں نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر میں نے حساب دینا ہے تو پھر کل آپ کو اور آپ کو بھی دینا پڑے گا. اور وہ دن اور اس کے بعد وہ کیس ٹھپ ہو گیا. اس دن ہی لوگوں کو لگا کہ یہ جج صاحبان سارے ڈر گئے ہیں اس تھریٹ سے کہ کل ہمیں بھی حساب دینا پڑے گا. آج اگر ہم نے دیکھا کہ مظاہر نقوی صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں نکلا کہ انہوں نے فلاں جگہ پلاٹ لیا, اتنے کروڑ کا پلاٹ انہوں نے اتنے لاکھ میں لیا, تین تین چار چار کروڑ کے پلاٹ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے چار لاکھ پانچ لاکھ روپے میں خرید لیے مختلف ہاؤسنگ سوسائٹی سے, شو سے چار کروڑ کا بتایا, خریدا پانچ لاکھ روپے میں, شو کیا چار کروڑ کا ہے, بعد ازاں نو کروڑ کا بیچ دیا. مطلب ہے وہ ڈفرنٹ ان کے کیسز, ان کی ڈیٹیل جو بھی ان کے خلاف, کوئی اکبر داؤد نام کا کوئی بندہ ہے جس نے کمپلینٹ کی ہوئی ہے, لیکن اس نے کچھ نہ کچھ جھوٹے سچے تو ڈاکومنٹری پروف ساتھ لگائے ہوں گے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب کیس بنا تھا تو انہیں بھی پورا پورا حساب دے کے ان کی جان چھوٹنی چاہیے تھی, صرف تھریٹ کرنے سے یا جج صاحبان کو یہ احساس ہونے سے کہ کل ہمیں بھی حساب دینا پڑے گا, اس معاملے کو ٹھپ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ایف بی آر سے اگر ڈاکومنٹ ان کے لیک ہوئے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کہ انہوں نے اتنے پیسے جو ہے وہ انکم تھی ان کی اور انہوں نے ظاہر نہیں کی, اور بچوں کے پیسے باہر کیسے بھیجے, اور وہاں لندن میں پراپرٹی کیسے خریدی, اور کیا جو کچھ ہوا, انہیں حساب دے کے ان کی جان چھوٹنی چاہیے تھی, لیکن نہیں, ان کی جان ایسے ہی چھوٹ گئی تھی, تھوڑے میں ہی ان کا کام ہو گیا ایک ہلکے پھلکے تھریٹ سے ہی. پھر اسی تناظر میں اگر عمر عطا بندیال صاحب پہ کہیں پہ پریشر تھا, اور پریشر ڈالنے والوں نے اگر عمر عطا بندیال صاحب کے اور عمر عطا بندیال صاحب کے اس وقت کے جو دوست تھے یا ان کا گروپ سمجھا جاتا تھا, اگر ان کے کچھ قوائف کچھ ڈاکومنٹس انہیں دکھا کے انہیں رام کر کے ان سے مرضی کے اس وقت فیصلے لیے گئے یا فیصلے دینے سے انہیں روکا گیا تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جو موجودہ ہو رہا ہے, فار ایگزامپل مظاہر علی نقوی صاحب کے بارے میں اگر جو ثبوت ہیں جیسے بھی ہیں, مظاہر علی نقوی صاحب کو ریزائن کرنے کی بجائے انہیں فیس کرنا چاہیے تھا, لیکن مظاہر علی نقوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تھا, نہ مجھے سپریم جوڈیشل کونسل میں انصاف کی توقع تھی, نہ ویسے جو کیس لگا ہوا تھا اس میں ہو رہی تھی. اور وہ یہ کہنے میں بھی حق بجانب ہیں کہ اگر میرے خلاف میرے سمیت 21 ججز کے خلاف جو انکوائری آئی ہوئی تھی ان میں سے 19 آپ نے مخالف جو شکایت کنندہ کو سنے بغیر آپ نے مسترد کر دی, تو میرے معاملے میں آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے مسترد نہیں کر سکتے؟ آپ جہاں 19 کو کر سکتے ہیں 20 کو بھی کر سکتے ہیں, اور شاید آنے والے دنوں میں آپ 21 کمپلینٹ کو بھی کر دیں گے. لیکن مظاہر نقوی صاحب کو بھی ایسے استعفیٰ دے کے نہیں جانا چاہیے تھا. اب اعجاز الحسن صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے بارے میں بھی کوئی جوڈیشل ریفرنس آ رہا تھا اور انہوں نے اس کے آنے سے پہلے ہی ریزائن کر دیا, اور یہ بالکل آپ انگشت بدلنا آپ ہی نہیں پورا پاکستان ہے کہ ایک بندہ جس کو چند ماہ کے بعد اکتوبر 2024 میں ابھی تقریباً 7-8-9 کے بعد اس نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا, اور پاکستان میں کوئی بھی شعبہ عدلیہ سے چاہے وکالت سے منسلک بندے کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان بنے. اب اتنے قریب پہنچ کے, منزل کے بالکل قریب پہنچ کے انہوں نے ایسا کیوں کیا, اس کا مطلب ہے ان پہ پریشر کوئی حد سے زیادہ تھا, اور ان کے خلاف جو کیس ریفرنس آ رہا تھا یا تو وہ ریفرنس بہت تگڑا تھا یا ان پہ جو پریشرز ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ میرے خلاف جھوٹے سچے کیسز بنا کے مجھے صرف پریشرائز کیا جا رہا ہے. کیوں کہ اس وقت واحد ریزسٹنس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے اگر وہ تھی تو وہ اعجاز الحسن تھے. اعجاز الحسن صاحب جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے طے کیا تھا کہ ہم آئندہ تین سینئر ترین ججز مل کے بینچ بنائے جائیں بنایا کریں گے, شروع میں انہوں نے دو تین بینچ بنائے, لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اس میں اختلافی نوٹ لکھے ان کو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کیا گیا, انہیں ظاہر ہی نہیں کیا گیا, اور ان کی مرضی کے خلاف ہی بینچز بھی بنتے گئے, اور اس کے بعد ازاں تو انہیں بلانا ہی مناسب نہیں سمجھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. طارق مسعود صاحب کو پتہ نہیں وہ بلاتے یا نہیں بلاتے تھے, لیکن خود ہی انہوں نے بینچز بنانے شروع کر دیے اور اپنی مرضی کے بنائے. اور اب پچھلے کو دو ہفتے سے تین ہفتے سے یہ چل رہا تھا کہ کلیئر کٹ جتنے بھی اعجاز الحسن صاحب ہو گئے, منیب اختر صاحب ہو گئے یا اور ان کی مرضی کے جو ان کے ہم خیال ججز تھے, ان کو پہلے تو بینچز میں شامل نہیں کیا جاتا, اگر کیا جاتا تھا تو انہیں بینچ نمبر 5, 6, 7, 8 جو غیر ضروری قسم کے کیسز تھے ان میں انہیں بٹھا دیا جاتا تھا. اور پھر عطر من اللہ نے ایک کیس میں عمران خان کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ معصوم ہیں, تو اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن, اس کے بعد عطر من اللہ صاحب بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ان کی گڈ بکس تھی اس گڈ بکس میں سے نکل گئے, اور وہ شاید ان کا تاثر ہے کہ وہ شاید اس بک اعجاز الحسن صاحب کی گڈ بکس میں چلے گئے ہیں. अब एक इस्तीफा तो आया है मज़ाहिर नकवी साहब का, एक आया है एजाज़ उल हसन साहब का, सुना है कि याह्या अफरीदी साहब भी लिख बैठे हैं या दे बैठे हैं, और उसके बाद सुना है कि मुनीब अख्तर साहब और आयशा मलिक जो हैं और अतर मिनल्ला के बारे में मुझे डाउट है कि वो नहीं, कभी भी नहीं करेंगे रिजाइन, बल्कि वो तो अंदर से खुश होंगे कि जितने ऊपर से रिजाइन कर जाएं मेरे चांसेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के इतने इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि सीनियर जब ऊपर से रिजाइन कर जाते हैं तो जूनियर ही सीनियर हो जाते हैं। तो देखें आइंदा एक दो दिनों में क्या होता है, लेकिन इस्तीफा गया है, अभी सदर पाकिस्तान ने अप्रूव करना या ना करना तो सदर पाकिस्तान की मर्जी है, लेकिन सदर पाकिस्तान भी आपको पता है आजकल जब से उन्हें आर्मी चीफ और DGISI मिले थे प्रेसिडेंट हाउस में जाके, और उन्होंने उनके बेटे साहबजादे अवाब अलवी का के ट्वीट्स दिखाए थे जो उन्होंने 9 मई के बाद PTI और इमरान खान के हक में ट्वीट्स किए हुए थे, वो दिन और आज का दिन आरिफ अलवी साहब के अंदर से भी उनके भी ढंग में जो जहर था वो भी खत्म हो चुका है, और अब अवाब अलवी साहब तो अपने बाप से नाराज हैं कि आपने बाबा ये क्यों किया, आप इतने क्यों लेट गए हैं, हालांकि अवाब अलवी साहब ने कराची से कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट की दरख्वास्त दी हुई है PTI को, और उन्होंने अपने कागजात नाम वहां कराए हुए हैं, जमा कराए हुए हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन इससे जाहिर ये होता है कि वालिद साहब तो पिंडी के प्रेशर में आ गए हैं, बेटा अवाब अलवी जिसने ट्वीट किए थे जिसकी वजह से वालिद साहब प्रेशर में आए हैं वो अभी तक प्रेशर में नहीं है, वो अभी तक PTI और इमरान खान के साथ ही खड़ा है। जी
बहुत शुक्रिया जनाब फयाज फिलाना साहब हमारे साथ हैं। फयाज फिलाना साहब आज वो जो द वायर के हैं, मैं एक इंटरव्यू देख रही थी और वो इंटरव्यू किया उन्होंने नजम सेठी साहब से, और नजम सेठी साहब हालांकि मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, उन्होंने बड़ी वाज़ अल्फाज में ये लफ्ज़ कहा कि जितने सर्वे देख रहे हैं या जो मुल्क की सूरत हाल देख रही है हर इशारा ये मिलता है कि तहरीक-ए-इंसाफ हर तौर पे जीतेगी, और उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का कहा, उसने जो होस्ट है उसने उनसे कहा कि बाय एस्टेब्लिशमेंट व्हाट डू यू मीन, उसने कहा कि ऑफकोर्स आर्मी, वाज़ह तौर पे उन्होंने ये बयान किया, और उन्होंने ये भी कहा कि एक इस मुल्क में यह हद दो इलेक्शन है जो आज तक की इसकी तारीख में फेयर हुए हैं, तो ये इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, अगर ये इलेक्शन फेयर नहीं होंगे तो फिर इन इलेक्शन की तो कोई अहमियत ही नहीं रहती, और कैसे हमारा एक इतना मुअज़्ज़ज़ शख्स जो कि चीफ मिनिस्टर भी रह चुका हो पंजाब में, वायर को जाके ये इंटरव्यू दे सकता है, क्या हमारे इदारों की सुबकी ना हुई इसमें, क्या इस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है, या क्या इस इंटरव्यू से ये मैं महसूस करूं कि आपके इदारों को अगर पता ही है कि मुस्लिम लीग PTI नहीं हर हालत में जीतना है तो व्हाट रिजल्ट्स डू वी एक्सपेक्ट अदरवाइज।
अच्छा ये जो आप बात कर रही हैं नजम सेठी के इंटरव्यू की, अब आप देखें कि नजम सेठी से एक्सपेक्ट आप नहीं करते थे कि वो इस तरह बोलेंगे, लेकिन बिल आखिर आपको पता है जमीर की एक आवाज होती है उस पर बोलना पड़ता है, और मे भी आज बोले हैं तो कल शाम तक मियां साहब का फोन उनको चला जाए, मियां नवाज शरीफ साहब का, और उन्हें फिर वो याद यानी कराई जाए कि हजूर आप आए थे लंदन और लंदन में हमने तो आपको ग्रैंड टेम्स में उसमें कश्ती में सैरें भी कराई थी, और बाकी भी जुगनू मोहसन को भी जहां जहां अकोमोडेट करना था बतौर MPA, वो आजाद उम्मीदवार MPA थी, लेकिन जहां जहां उन्हें अकोमोडेट करना था मैंने किया, आपको लिए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का आपको चेयरमैन भी बनाया, मुखालफतें भी मोल ली, सारा कुछ किया, और अब आप ऐसे बयान दे रहे हैं तो शायद कल तक वो यू टर्न ले लें और कल कोई और उससे भी ज्यादा तगड़ा इंटरव्यू दे दें मियां साहब के हक में जो जाए। तो नजम सेठी साहब जैसे लोगों से आप किसी वक्त भी यू टर्न और जिग जैग किस्म की उनकी मूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं पाइल अप हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल दी इकोनॉमिस्ट की चीज क्या लोग भूल गए हैं? नहीं भूले, नजम सेठी नहीं भूले, आगे चल के इसमें मजीद अभी डेवलपमेंट होने वाली है, और आइंदा हफ्ते डेढ़ में आप देखेंगे ये पाकिस्तान भर में ये सारी चीजें जो अभी इस वक्त आपके जहन में, मेरे जहन में, कुछ लोगों के जहन में खटक रही हैं, ये आगे चल के इस हद तक आगे बढ़ेंगी कि वाकई लोग सड़कों पर निकल आएंगे, स्पेशली जब अभी कागजात तकरीबन अगर 70-80% लोगों के कागजात नामजदगी अप्रूव हो गए हैं, और फॉर एग्जांपल अगर आप PTI की लिस्ट पे देखें तो बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के अप्रूव हो गए हैं, या जमीर का, शोएब शहीन का, जैन इराई का, अली मादल शेख का, इसके अलावा सिरगोदा से उसामा गयास मेला, सनाउल्ला मस्ती खेल, डॉक्टर कादी अकबर अटक से, चौधरी गुलाम अब्बास सियालकोट से जो एंटी करप्शन कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, और उनके साहबजादे एहसन अब्बास के, फिरदौस शमीम नकवी के कराची से, उमैर नियाजी, शेख रशीद, एजाज़ुल्लाह, हामद रजा, एक लंबी लिस्ट है पाकिस्तान भर में अगर देखा जाए तो तगड़े उम्मीदवार PTI को मिल गए हैं। अब जो ही बल्ले का निशान क्लियर होना है, इनको टिकट अलॉट होने हैं, इन्होंने बाहर पब्लिक में निकलने की कोशिश करना है, हर बंदा छुपा हुआ नहीं है, 5% या 10% लोग छुपे हुए होंगे, और फॉर एग्जांपल जो छुपे हुए हैं उनमें उमर अयूब है, मुराद सईद है, तैमूर जागड़ा, ये बड़े लोग हैं, ये वो हैं जिनको एक घर दिन भी अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, और इन्हें कोई अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, इन्हें लोगों के घरों में जाके वोट मांगने की जरूरत नहीं है, इनके लिए सिर्फ इतना ही काफी होगा बैरिस्टर गौहर अली खान या शेर अफजल मरवत या जो भी पीटीआई का नुमाइंदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा कि ये हमारी लिस्ट है कैंडिडेट्स की। इमरान खान ने तो अपनी, आपको याद है जब इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया था लास्ट अप्रैल में, तो उसने कोई तकरीबन 6 महीने में उसने कोई 80 के तकरीबन 80 से भी ज्यादा जलसे कर लिए थे, और उस वक्त लोग कह रहे थे कि ये पागल हो गया है, ये अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को थका रहा है। मैं भी यही कहता था कि इमरान खान अपने वर्कर्स को थका रहा है, लेकिन अल्लाह के काम अल्लाह जानता है। उस वक्त इमरान खान ने जो जलसे कर लिए थे, तकरीबन 80-90 जलसे उसने कर लिए थे पाकिस्तान भर में, बेसिकली उसने अपनी कंपेन तो कंप्लीट कर ली उस वक्त ही, उसके बाद की जो कंपेन है वो अब हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कंपेन उसकी द इकोनॉमिस्ट से हो रही है, उसकी कंपेन जिस दिन ये इंटरनेट पूरे पाकिस्तान में बंद कर देते हैं, पूरे पाकिस्तान को हर बंदा दूसरे साथ बैठे वाले बंदे से बैठता है कि भाई मेरा फोन नहीं चल रहा, मेरा इंटरनेट चल, तुम्हारा चल रहा है, वो कहता है नहीं मेरा भी नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि वो पीटीआई वालों का जलसा था ऑनलाइन, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। फिर लोगों को पता चलता है अच्छा पीटीआई जिंदा है और वो ऑनलाइन जलसे कर रही है। फिर जब बताया जाता है कि बल्ले का निशान मिल गया, छीन लिया, मिल गया, छीन लिया, मिल गया, अब ये इसी तरह ही है जिस तरह फॉर एग्जांपल हम यहाँ 4-6 दोस्त बैठे हुए हैं और हम में से एक बंदा या 2 बंदे जिन्हें लस्सी पसंद ना हो, और कोई बंदा कहे जी कि हम आशवा से पिकरिंग से मैं लस्सी लेके आ रहा हूँ स्पेशल बनवा के आपके लिए, और हर 10 मिनट बाद वो कॉल करे कि मैं बस ट्रैफिक में स्टक हो गया हूँ, मैं पहुंचा, मैं लस्सी लेके आ रहा हूँ, और बाकी जो लस्सी के दिलदादा हूँ वो कहें जी बस लस्सी आई के आई। अब उस लस्सी के यहाँ पहुंचने तक, जहाँ हम बैठे हुए हैं वहां पहुंचने तक, वहां जिन लोगों को लस्सी से दिलचस्पी नहीं है वो भी कहेंगे कि भाई भाई कौन सी लस्सी है जिसके लिए इतना इंतजार हो रहा था, जिसके बारे में बार बार वो बंदा फोन करके कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में स्ट्रक हो गया हूँ, जो इतने दूर से बन के आई है, वो भी कहते हैं कि भाई एक गिलास में मुझे भी डाल दो, मैं भी टेस्ट करता हूं। अब बल्ले के बारे में इन्होंने जितना बल्ले का कर लिया है बैक एंड फोर्थ, अब बल्ला इतना इंपॉर्टेंट हो गया है और हर बंदे को पता चल गया है, देहातों में रहने वाली बूढ़ी औरतों को और सादा लोग औरतों को और जिन लोगों को आप कहेंगे कि अनपढ़ हैं, इलिटरेट लोग हैं, उनको भी पता चल गया है कि बल्ला पीटीआई का निशान है। ये जितने काम कर रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो केसेस खत्म करने का मामला है, एक तरफ ठीक है आपने अदलिया पे भी अपना कंट्रोल कर लिया, इंतजामिया भी आपके हाथ में है, केयर टेकर गवर्नमेंट तो है ही बिल्कुल आपकी गोद में, सब कुछ यहाँ है, लोगों को पता है कि ये कहाँ से चीजें जो हैं वो ट्विस्ट की जा रही हैं, कौन कर रहा है, आप काले शीशे की गाड़ियों में मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बिठा के अपने सेफ हाउस में ले जाएं और वहां उन्हें ब्रीफ भी कर दें, सारा कुछ कर लें, लेकिन मियां साहब के दिल गुर्दे मजबूत कौन करे, उन्हें हौसला कौन दे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब, जावेद लतीफ साहब और इनके जो रहनुमा हैं वो जब अपने हलकों में बाहर निकलते हैं तो आगे से उन्हें पता चलता है कि लोगों ने बैनर लगा के रखे हुए हैं कि यहाँ कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा हमारे हलके में वोट मांगने ना आए, वरना वो अपनी इज्जत का खुद ही जिम्मेदार होगा, जो उसकी इज्जत अफजाई होगी यहाँ इस इलाके में। इस तरह मियां साहब को हौसला कौन दे? दूसरी तरफ शहजाद अकबर लंदन में बैठा हुआ है, शहजाद अकबर वो बंदा है जिसने इमरान खान को लेट डाउन किया, जिसने को इत्साब की जिम्मेदारी थी वो इत्साब नहीं कर सका, नालायक आदमी था, लेकिन वो खामोश नहीं बैठा। हम जैसे लोगों ने मुसलसल जो उस पर हम तनकीद कर रहे हैं, मे भी वो अभी उसे ख्याल आया कि शायद मेरा काम करना अभी रहता है। अभी ताजा तरीन उसने वारदात क्या की है कि उसने हाई कोर्ट में एक दरखास्त दी है और उसने कहा कि सलमान शहबाज को और सलमान शहबाज के जितने साथी थे उन्हें जो बरी किया गया है उनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से, वो गलत किया गया है, और उसने कहा है कि हमने उसमें 10,000 डॉक्यूमेंट्री प्रूफ साथ लगाए थे, डॉक्यूमेंट साथ लगाए थे, और इसको दोबारा ओपन किया जाए, उनको गलत बरी किया गया है, इन्होंने वाकई मनी लॉन्ड्रिंग किया है, इन्होंने इरेगुलरिटीज फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का शिकार हुए हैं, और उसमें उसने पूरी डिटेल्स दी है और एफआईए को और उनको सबको पार्टी बनाया है शहजाद अकबर ने। ये इसने कहा है कि जी 28 बेनामी अकाउंट थे, 15,000 ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी मौजूद था जिसको हमने चालान का हिस्सा बनाया था, 100 लोगों की फहरिस्त दी थी हमने गवाहान की। अब फॉर एग्जांपल शहजाद अकबर अगर लंदन से बैठ के पाकिस्तान के हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दिलवा रहे हैं अपने वकीलों के जरिए, तो वो अगर 10,000 ट्रांजेक्शन की बात करता है और कोई पता नहीं कि उसने उन ट्रांजेक्शन की और साथ जो प्रूफ उसने लगाए हैं उसके में भी उसने कॉपीज रखी हुई हों, उसके पास कुछ प्रूफ उसके हाथ में होंगे तो वो दोबारा केस ओपन कराना चाहता है। अब देखिएगा कि ये मजीद मियां साहब पे प्रेशर डालने के लिए हमारे पिंडी बॉयज ये इस तरह की जो हाई कोर्ट्स में एप्लीकेशनें जा रही हैं उनको बरजाव रगबत इंटरटेन करने के लिए कहेंगे, क्यों? कि वो फ्री हैंड ना मियां नवाज शरीफ साहब को देना चाहते हैं आज, ना वो गुज़श्ता कल फ्री हैंड इमरान खान को देना चाहते थे, और ना उससे गुज़श्ता परसों वो मियां नवाज शरीफ साहब को देना चाहते थे। वो फ्री हैंड किसी को नहीं देना चाहते, वो हर एक को अंडर प्रेशर करना रखना चाहते हैं। लेकिन आप जब एक ए पार्टी को, बी पार्टी को, सी पार्टी को, डी को, सबको प्रेशराइज रखेंगे, इसका मतलब आप पूरे पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं। और प्रेशर की भी एक लिमिट होती है, प्रेशर कुकर भी आपको पता है ना होता ही इसलिए है कि खाना जल्दी गल जाए उसे प्रेशर डालने के लिए, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, एक सीटी बजती है, जब वो सीटी बज जाए और उसके बाद अगर आप हीट ऑफ ना करें और प्रेशर कुकर को हीट से साइड पे ना करें तो वो प्रेशर कुकर भी फट जाता है। अब हमारी पाकिस्तानी कौम का जो प्रेशर कुकर है वो फटने के करीब है। आइंदा एक दो हफ्ते में आप देखिएगा कि जब ये बाकायदा कंपेन शुरू होगी, और फॉर एग्जाम्पल पीटीआई के लोगों को तो आप बाहर नहीं निकलने देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के और बाकी जो आजाद उम्मीदवार हैं वो तो बाहर निकलेंगे गली गली, और जब वो गली गली निकलेंगे तो लोगों के पास जवाब हो जाएगा बाहर निकलने का। अब जब लोग बाहर निकलेंगे तो फिर किसको क्या पता कि किसकी जैकेट के, किसकी चादर के अंदर से, किसकी स्वेटर के अंदर से पीटीआई का फोल्ड हुआ हुआ झंडा निकलेगा, और फिर वहां जो धींगा मुश्ती शुरू होगी और वहां जो खेंचातानी शुरू होगी, वहां जो सिविल वार की ऐसी जो सिचुएशन होगी, ये बड़ी अलार्मिंग होगी, बहुत खतरनाक होगी। और उस वक्त हमारे ये जो फैसला साज हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या हमने इलेक्शन अनाउंस करा के या इलेक्शन पे प्रेशराइज काजी फायदी से डलवा के क्या हमने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया।
बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रोग्राम को देखा कीजिए। वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मुझे डायरेक्टली ईमेल करके भी इंफॉर्मेशन, मुझसे तो जो शख्स भी फयाज बिलाना साहब का नंबर मांगता है ऑलवेज पास, बिकॉज हमारा काम क्या है, हमारा काम आपसे बात करना, मेरा नंबर इज़ अ पब्लिक नंबर, एंड आप हमसे बात कीजिएगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, वी लर्न फ्रॉम योर कमेंट्स। और हमारी वेबसाइट www.eawaz, मेरी दरख्वास्त है कि ये प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए पेश किए जाते हैं, हम कोई सेंसेशनल न्यूज़ नहीं देना चाहते। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गिव अस योर फीडबैक। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे है, एंड ज़ाहिर है वही टाइम का ही मसला अगेन हुआ करता है। जनाब निगरान जो हमारे मुर्तज़ा सोलंगी साहब हैं वफाकी वज़ीर इत्तला'आत, उन्होंने निगरान हुकूमत का काम है कि विदाउट गिविंग एनी हिंट कि उनका झुकाव किस तरफ को है, दे कैन नॉट शो दिस, मगर उन्होंने क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर दिया है तो उन्होंने एक बयान दिया जिसमें पीपल्स पार्टी का नाम तो उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये 300 यूनिट बिजली के, क्योंकि उन्होंने 300 यूनिट ही मेंशन किए थे बिलावल ने, तो 300 यूनिट बिजली के हम मुफ्त दे देंगे या हम तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। उन्होंने कहा ये नाकाबले हसूल चीज़ें हैं, तो इस तरह के पार्टीज़ को बयान नहीं देने चाहिए। मगर पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला मिस्टर सोलंगी जो हैं उन्होंने अपने इस बयान से, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली उन वर्ड्स को पिक किया है पीपल्स पार्टी के मंशूर से, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया है। और उन्होंने कहा है कि मुर्तज़ा सोलंगी को इतना ही चाह तो डायरेक्ट इलेक्शन चाण, तो क्या वजह है कि निगरान हुकूमत के ये अहलकार जो हैं व्हाई दे आर दे शो देयर पार्टिजन, अपनी झुकाव किसी एक पार्टी की तरफ क्यों दिखा रहे हैं, व्हाई डोंट दे टेक इलेक्शन हिस्सा, इलेक्शन में वाकई हिस्सा ले लें, व्हाट इज इन इट फॉर देम।
मुर्तज़ा सोलंगी जैसे लोग हैं, मैं आपको बता कहता हूं कि ये लोग जो होते हैं हमारे कुछ मीडिया के लोग हैं और ज्यादातर फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, कुछ लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, ये पूरी पाकिस्तान में एक लॉट है जॉब सीकर्स की। मुर्तज़ा सोलंगी जॉब सीकर्स की उस लॉट में थे। हम लोगों को शुभ था कि शायद वो उस नया दौर में रजा रूमी जो वाशिंगटन में डीसी में बैठे हुए हैं उनके साथ मिलके कोई पाकिस्तान में सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से या लेफ्ट की पॉलिटिक्स के हवाले से या इस तरह के जो जमहूरी और शख्सी आज़ादियों के चैम्पियन लोग होते हैं या दावेदार होते हैं उनके साथ मिलके वाकई कोई जर्नलिज्म कर रहे हैं। लेकिन जो ही उन्हें जॉब ऑफर हुई उन्होंने देर नहीं लगाई, शायद पाँव में जूते पहने हैं कि नहीं पहने हैं, वो भागते गए हैं और उन्होंने जाके वजारत संभाल ली। तो ये प्रूव हो गया कि ही आल्सो बिलोंग्स टू दैट जॉब सीकर्स की जो लॉट है उससे बिलोंग करते हैं। वो अपने उसूल से, नज़रिए से, आदर्श से, अपने ख्यालात से उससे मुखलिस होना और नज़रियात पर डटे रहना, चाहे अच्छे हालात हों बुरे हालात हों, आपको तीन वक्त की रोटी मिले या ना मिले, लेकिन नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनकी पासदारी करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये लोग अब ये इन्हें जॉब मिल गई और उस जॉब जब से मिली इन्हें और उसके बाद इनके हाथ में जब आया इख्तदार और इख्तियार, फिर आपने देखा इन्होंने कैसे कैसे तमाशे किए, पीटीवी में इन्होंने क्या काम किए, रेडियो पाकिस्तान में इन्होंने किस तरह की भर्तियां की, फिर पाकिस्तान भर में इन्होंने चैनल्स में पैमरा के जरिए किस किस को कहां कहां प्रेशराइज करने की कोशिश की, फिर ये अपने इनवारुल्लाह काकड़ साहब के और हमारे जो आर्मी चीफ हैं इस वक्त जिनके हाथ में है सब कुछ, उन्हें खुश रखने के लिए इन्होंने कैसे कैसे उल्टे सीधे बयान दिए। अब अगर वो उन्होंने अपनी नाक जो है और अपने सींग जाके फंसा लिए हैं पीपल्स पार्टी वालों के साथ, तो उन्हें एहसास होना चाहिए इस बात का कि अगर उनके बारे में अगर किसी पोलिटिकल पार्टी के पास नर्म गोशा था तो वो पीपल्स पार्टी ही थी। आज इनकी केयर टेकर गवर्नमेंट खत्म हो जाए, दो महीने बाद छह महीने बाद खत्म हो जाए, तो अल्टीमेटली इन्होंने वापस तो जाना है और अब इन्हें खून लग चुका है इकतदार का और अब ये कभी भी वापस जो है मीडिया की तरफ 100% नहीं आएंगे। हाँ, कलम को और माइक को यूज करते रहेंगे दोबारा इकतदार हासिल करने के लिए और अब वापसी पे इनकी कोशिश होगी कि इन्हें पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून वाले कोई भी इन्हें अडॉप्ट कर ले, जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब को केयर टेकर गवर्नमेंट से अडॉप्ट कर लिया गया था। और फिर आप देखिएगा कि आइंदा इलेक्शन तक आपकी और मेरी या मेरे जैसे लोगों की जिनकी ख्वाहिश है कि ये पब्लिक के पास जाएं और इलेक्शन लड़ें, तो कोई बईद नहीं कि मुर्तजा सोलंकी साहब अपना सिंध के किसी हलके से टिकट भी लेके इलेक्शन भी लड़ लें, क्योंकि चार छह महीने जब हुकूमत में रहते हैं तो आपके मामला माली मामला काफी बेहतर हो जाते हैं और फिर इन हालात में जब आपके पास अरबों रुपए के इश्तहार हों, अब इनके इस वक्त किन को इश्तहार जारी कर रहे हैं, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन कौन से लाइसेंसेज इशू किए जा रहे हैं, ये चीजें बाद में खुलेंगी जब ये हुकूमत में नहीं होंगे। लेकिन मुर्तजा सोलंकी साहब कुछ कम नहीं कर रहे, अपने से पहले जो वजीर इतलात थे उनके किसी फवाद चौधरी थे या मरियम औरंगजेब से किसी से कम हाथ नहीं रखा हुआ, बिल्कुल उनसे चार हाथ आगे हैं मुर्तजा सोलंकी साहब। जी
बहुत शुक्रिया जनाब फयाज विलाना साहब, यकीनन आप बड़ी तफसील से लेके जाते हैं, पीपल लव योर एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। मैं आप तमाम से एक बार फिर दरख्वास्त करना चाहती हूँ, मैं फयाज विलाना साहब से भी कहती हूँ कि अगर आप भी दरख्वास्त करें, वी नीड योर सपोर्ट, आप प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर किया कीजिएगा, हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।
अच्छा, जब हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं ना कि आप सब्सक्राइब करें, तो सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट करने से पहले मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो अब तक हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं, हमारी तवक्को से ज्यादा रिस्पांस आपका मिला है, थैंक यू वेरी मच। आप पसंद करते हैं हमें हमारे प्रोग्राम को, आप कमेंट करते हैं, मुझे लोग टेलीफोन करके अपने टेक्स्ट मैसेजेस छोड़ के व्हाट्सएप पे ऐड करके अपने कभी कभी मुख्तसर और कभी कभी बहुत लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं, लोग अपने वॉइस नोट्स छोड़ते हैं, लोग पसंद करते हैं, लोग तनकीद करने वाले भी उनको भी हम वेलकम करते हैं, आप तनकीद भी करें, लेकिन एक जहन में रखें कि कौन सा बंदा बात रीजनेबल करता है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू राइट लेफ्ट या सेंटर में हो सकता है, लेकिन बात की जो भी आप बात कर रहे हैं उसके साथ अगर कोई दलील अटैच है तो प्लीज उस बंदे को आप जो है एक्सेप्ट करें, सुने, बार बार सुने, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारा प्रोग्राम, हमारी कोशिश होती है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, हम पाकिस्तान से बाहर जो बैठे हुए हैं, हम ग्राउंड से बाहर बैठे हुए वो बारहवें खिलाड़ी हैं जिन्हें नजर आ रहा है कि ग्राउंड के अंदर बैट्समैन क्या गलती कर रहा है और बॉलर क्या गलती कर रहा है और फील्डर से क्या मिस्टेक हो गई है। हम बारहवें खिलाड़ी सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि भाई ये फलां फलां चीज ठीक कर लो, हमें कोई शौक नहीं है, हमने पाकिस्तान के किसी कौमी असेंबली से आके इलेक्शन नहीं लड़ना, हमने पाकिस्तान में आके किसी सूबाई असेंबली से इलेक्शन नहीं लड़ना, और हम में से अगर कोई हजारों में से एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक ताबिश तौफीक साहब यहाँ कैनेडा से अभी गए हैं सिंध में, उन्हें कराची में पीटीआई का टिकट भी मिल गया है, उनके कागजादे नामजदगी पहले एतराज लगा बाद में अप्रूव हो गए, अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर कोई हजारों में से हम ओवरसीज पाकिस्तानी, बल्कि हम अब एक करोड़ हो चुके हैं, उनमें से अगर एक दो तीन या चार जाके लड़ते भी हैं तो वो यहां से अपनी सिटीजनशिप छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरह फौजिया कसूरी ने अपनी सिटीजनशिप अमेरिका की छोड़ी थी, जिस तरह ताबिश तौफीक साहब ने अभी अनाउंस किया है कि मैं जो ही इलेक्शन जीतूंगा उससे पहले ओथ लेने से पहले मैं अपनी कैनेडियन सिटीजनशिप जो है वो छोड़ूंगा, इसके लिए वो आपके मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं और वहां आइडियाज लेके जा रहे हैं। आप प्लीज हमें एक्सेप्ट करें और हमारी बात को भी सुना करें। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप किसी और चैनल के जरिए, फॉर एग्जांपल लोग मेरी गुफ्तगू के छोटे छोटे क्लिप्स बना के उस पर टिकटॉक पे चला रहे हैं, इंस्टा पे चला रहे हैं, कहीं से आपको मिलते हैं, आप प्लीज शेयर करें, लिंक कमेंट करें और अपने दोस्तों को कहेंगे सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया फयाज दिलाना से आपकी बात कराई। स्टे ट्यून्ड, चंद स्पॉन्सर्स, वेलकम बैक। नान कबाब को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, हेल्थी फूड के लिए, इट्स ऑल ग्रिल्ड फूड, नान कबाब, दे हैव सेवन डिफरेंट लोकेशंस। घर खरीदना या बेचना, मैंने जाहिर है मुझे अपना कमर्शियल देना बाज़ोकत भूल जाता है रियल स्टेट के हवाले से, बाज़ोकत मैंने कभी कम ही अपना कमर्शियल इस तरह से कवर करती हूँ। अगर आप घर खरीदना चाहते, बल्कि जावेद भाई ਸਕਾਰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸਮੋਸੋ ਵਾਲੇ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਆਪਕਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਮੇਂ ਆਗੇ ਪੀਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੇ ਇਤਨਾ ਕਾਮ ਕੀਆ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਆਪਕੇ ਦੋਸਤ ਕੇ ਲੀਏ ਘਰ ਦੇਖਾ ਵੋ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਥੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਝਸੇ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 6478986245 ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ मुझे कोई ग्रीड नहीं है, जाहिर है कोशिश होती है कि पहले आप लोगों की मॉर्गेज का अप्रूवल हो ताकि आई डू नॉट वॉन्ट टू हैव स्लीपलेस नाइट्स टूवर्ड्स द एंड। मॉर्गेज अप्रूव करने के लिए रादर देन गोइंग डायरेक्ट टू द बैंक वी रिक्वेस्ट यू प्रॉपर लोगों के, क्योंकि दे प्रिपेयर योर फाइल्स एज पर बैंक्स रिक्वायरमेंट। और एक बात का याद रखिएगा, दे विल गेट यू मॉर्गेज फ्रॉम द बैंक, इट्स नॉट फॉर मी। मैंने ज़ाती तौर पर जब कर लिया था I paid more than 70%, मगर बैंक ने आखिर में पर्चे मंग मंग के मेरे नक तो लकीर लवातियाँ सी। तो मेरा नंबर 6478986245। आई लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, गेट रेडी फॉर द न्यूज।
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस तो बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा, 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो 905-607-5000
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान। 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659। लाइसेंस नंबर 10530।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स, LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 905-455-1666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
एशियन फूड सेंटर दिया सारिया ही लोकेशंस ते 11 जनवरी तो 21 जनवरी तक लग चुकी है लोड़ी सेल। 10 पाउंड शेयर मल्टीग्रेन आटा 13.99, 10 पाउंड इंडिया गेट बासमती राइस 11.99, आमंड्स 4.99 पर पाउंड, 300 ग्राम खालसा पनीर 4.29। लोड़ी दे खास मौके ते लार्ज वैरायटी ऑफ रेवड़ी, गच्चक, मूंगफली, गिफ्ट बॉक्सेस भी मिलन गिया। फल फ्रूट दाला सब्जियां दी लार्ज वैरायटी अंडर वन रूफ। एशियन फूड सेंटर नाउ ओपन इन ग्वेल्फ। 416-740-3262। एशियन फूड सेंटर विशिंग you all happy loading।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
ओ बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ ऑयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
मजे मजे के टिक्के, मजे के कबाब,
खाना हो तो आ जाओ शाहीन, शाहीन टिक्का और कबाब।
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ व्हाइटनिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100। कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
जी समय नाजरू, वेलकम बैक अगेन। एंड 4:50 और 37 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं। स्टिल ब्यूटीफुल गॉर्जियस 2 degrees टेम्परेचर विच इज प्लस। अभी प्लस में रहिए क्योंकि बाय द वीकेंड यू विल बी सीइंग एंड फीलिंग -16 to -18 degrees टेम्परेचर। लॉस ऑफ स्नो एंड लॉस ऑफ स्लशी वेदर, बी वेरी केयरफुल ऑन द वीकेंड स्पेशली टिल सैटरडे। संडे को फिर अच्छा मौसम आ जाएगा। न्यूज की तरफ लिए चलेंगे। दिस सेगमेंट ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय ग्रिल एंड चिक, बेस्ट ग्रिल चिकन इन टाउन, ये कहते हैं। और मिसागा में 3525 प्लैटिनम ड्राइव एंड ब्रैम्पटन में 15 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, www.grillandchick.com पे जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। 9054560500 इनका फोन नंबर है। और उसके साथ साथ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के जनाब सुल्तान भाई कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास बे इंतहा अच्छी किस्म की सेल लगी हुई है, तो आप पहुंचिए। आपने जाना है 801 बोवेड ड्राइव, बोवेड एंड लजी साहब आमिर की जवाब नहीं है, वो जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो उस वक्त ना वो स्क्रीन नहीं दिखाता मुझे, कहता है अपनी मेमोरी पे जरा दिखाएं आप। अब दिखाने से क्या फायदा, मैं तो बोल गया हूं उसको, मुझे पता है, याद है। 801 बोवेड ड्राइव, बोवेड एंड चिंकूजी के कॉर्नर पर आपको मिलेगा क्या, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 9054502828 इनका फोन नंबर है। हमारी और आपकी डेंटिस्ट डेंटिस्ट डॉक्टर पद्माजा रानी, 3410 शेपर्ड एवेन्यू, शेपर्ड एंड वार्डन के कॉर्नर पर आपको मिलेंगी, राइट एट द कॉर्नर ऑफ शेपर्ड एंड वार्डन, 4162997466। डॉक्टर पद्माजा, हमारी और आपकी डेंटिस्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हेयर मैक्स जनाब शिराज कहते हैं कि आप जो है भाई, अगर आपके आपके घर में किसी को भी सुनने में कमी आ रही हो, आ गई हो, तो साहब आप हेयर मैक्स शिराज से कॉन्टैक्ट कीजिए, 4167928792। साजो आवाज का हवाला देने पर आपकी जो हियरिंग टेस्ट है एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा। लीजिए साहब, चलिए साहब, अब क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा। हम अपने मेहमानों की बड़ी इज्जत करते हैं जी, तो हमारे ऑफिस में भी एक मेहमान बैठी है, उनकी भी हम इज्जत करवा ले। शाजिया मलिक जी, जो लोग कभी कभी काम पे आते ना तो मेहमान होते हैं ना वो, तो شاہجہاں ملک جی میرے ساتھ نیوز لے کے آئی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ
وبرکاتہ. آج پھر سے نکل آئے ہو اتنی سردی طوفان بارش میں.
دیکھو
یعنی مثال کے مطلب ہے بندہ کار کوئی بیٹھتا ہے, کوئی رضائی رضائی لے کے بیٹھتا ہے, کوئی کار والوں نو کہندا ہے میری خدمت کرو, کوئی سوجی دا حلوہ جلوہ بنا کے دیو. مطلب ہے تسی بھی تے میں بھی.
آپ کے پاس تو طاہر بھائی ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے. ہاں میرے پاس کون ہے؟
وحیدا جی.
ویدا
جی آپ کی کتنی خدمت ہے, روز آپ کے لیے نئے نئے کھانے, کتنی قسم کے کوزین, پتہ نہیں کیا کیا, وہ چائنیز تھے, اٹالین تھے, پتہ نہیں کون کون سے بنا بنا کے آپ کو دیتی ہیں روز. ہیں تو وہ خدمت نہیں کر رہی ہیں آپ کی؟
وہ تو
پارٹ آف دا جاب ہے.
مگر آئی ڈنٹ سے دیٹ.
دیکھیں آپ کا یہی
مطلب کہ وہ جو آپ کے طاہر صاحب ہے نا, وہ تو باہر موسم جتنا بھی خراب ہو وہاں سے باہر سے خرید کے لے کے آتے ہیں آپ کے لیے.
تو وہ اس دن ہوتا ہے جس دن میری طبیعت خراب ہوتی ہے. دس از ناٹ ایوری ڈے. اوکے
15 ڈیز اے ویک 15 ڈیز اے منتھ.
اچھا آپ نے ویک ہی 15 ڈیز کا بنا دیا.
15 ڈیز اے منتھ. سو واٹ, 15 ڈیز اے منتھ.
اچھا
کچھ نہ کچھ تو خرابی رہتی ہے مینٹل کے علاوہ.
تو میں نے تو آپ کو بڑی دفعہ کہا مجھ بھائی ہے کہ تم دنداں دے ڈاکٹروں دے پیچھے پے ہوئے ہو. کوئی دماغ کا ڈاکٹر, کوئی دل کا ڈاکٹر کوئی ڈھونڈے آپ ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں کوئی. تو اب اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیں پتہ کیا ہے مجھ بھائی, آپ جیسے جیسے معصوم ہیں نا, دیکھیں وہ کتنی ایسی باتیں کرتے ہیں پھر کتنا پٹتے ہیں. تو مجھے پتہ ہے آپ کیوں وحیدا جی کے خلاف بات نہیں کرتے ہو. وہ ایک لڑکا تھا نا, وہ بڑا وہ اداس بیٹھا ہوا تھا, تو دوسرا اس کے ساتھ اس نے وہ بڑے دانت نکال رہا تھا. تو وہ باقی یاروں دوست نے پوچھا, اس نے کہا یار تم کیوں دانت نکال رہے ہو؟ کہنا ہے وہ دیکھ یار سامنے والی چھت پہ کتنی سونی کڑی نکلی ہے. کہنا ہے وہ تم کڑیاں دیکھ رہے ہیں؟ کہنا ہے ہاں یار بس ساڈا کی ہے, سردی کا موسم ہے پاکستان دے وچ, جس طرح مطلب ہے تھپ نکل آتی ہے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے, کوئی سونی کڑی آ جاتی ہے تو جی خوش ہو جاتا ہے. ساڈے تو کوئی زیادہ مسئلے نہیں ہیں جی, مسئلے صرف لڑکیوں کے ہیں.
چھوٹا بہت,
ہاں
تھوڑا بہت,
ہاں تھوڑے مسئلے ہیں
سب. ابھی سے آپ, میں روزانہ آپ کو وارن کرتا ہوں کہ پہلے سے نمبر تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا, ابھی تک نہیں یاد ہے میں بتا دیتا ہوں. 6478724900 پہ آپ جائیے اور یہاں پر پہلے سے آپ تیار ہو جائیے, کیونکہ اب جو نیوز کا سیگمنٹ ہے وہ آپ وہاں سن سکیں گے, یا www.eawaz.com پہ جائیے, وہاں پر ہم کو دیکھ بھی سکتے ہیں, ہم کو سن بھی سکتے ہیں آپ. تو سب تیار ہو جائیے, ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, بریک کے فوری بعد ہم نیوز کی جانب چلیں گے. 416-620-1778 ہمارا فون نمبر ہے.
WTOR Youngstown Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kilohertz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world, in words and in music.
اچھا جی سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ آپ نے جو میں نے اجے بسیریا کی جو اپ کمنگ بک ہے اس کے اوپر جو رپورٹ دی تھی اس میں کچھ لوگ تو ہمارے بڑے بھڑک گئے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کس کی سائڈ پہ ہیں اور پائی جان ہم کسی کی سائڈ پہ بھی نہیں ہیں میں آپ کو جو اپ کمنگ بک تھی اس بک کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اس بک کے اندر کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے تو کیا یہ سچ ہے کہ نہیں ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا اس پہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں بھڑک گئے ہیں تو بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ذرا سنا کریں نیوز کو سنا کریں کہ نیوز کیا ہے جیسے کوئی فلم آتی ہے فلم کے اوپر ہم ریویو دیتے ہیں نا کہ بھئی یہ فلم آئی ہے اس کا یہ ریویو ہے تو ایک بک آئی ہے اس کا ایک ریویو آیا ہے اور وہ ریویو بھی کسی پاکستانی اخبار میں نہیں چھپا ہے وہ ریویو بھی ایک انڈین اخبار میں چھپا ہے تو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بھئی اس بک میں کیا کیا باتیں ہیں تو اس کے اوپر بہرحال جی جن لوگوں نے پسند کیا تھینک یو ویری مچ بہت بہت شکریہ اینڈ جناب دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی چاندنی وکٹوریا بینکوٹ ہال اس کے اندر 1400 لوگوں کی فیسلٹی ہے اگر آپ مجھے ماجد بھائی اور عامر کو ادھے بندے کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ ہم کو بھی بلا سکتے ہیں اور اس کے اندر 32 روم لگژری ہوٹل ہے یہ اور اس کے اندر آپ اپنے بزنس اور جو اپنے خود کے پرسنل ایونٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں بڑا ہی آئیڈلی لوکیٹڈ ہے ڈریو روڈ مسیساگا میں تو اگر آپ کو ان کو کانٹیکٹ کرنا ہے اپنے ایونٹس کے لیے تو آپ کال کر لیں ان کو 6479653823 اور جناب اونٹاریو کا لارجسٹ پاکستانی حلال بفے ویلج ٹیسٹ یہاں پہ چٹھا صاحب ہوتے ہیں ان کے دو اب ریسٹورانٹس ہیں ایک مسیساگا میں 4141 ڈکسی روڈ پہ ہے ادھر اگر آپ کو آرڈر ڈالنا ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں 905-232-3663 اور ایک ہے اوکویل میں ایٹ 2294 لیک شور روڈ ویسٹ اور ان کا نمبر ہے 905-226-2294 تو آپ ان کو